यह प्रवचन लाल गोविंद प्रभु के द्वारा 25 मार्च 2012
हनुमान जी महाराज के द्वारा भगवान रामचंद्र को जो स्तुति की गई है और जिस स्तुति का वर्णन श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में रखा गया है, आज हम उसी के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। श्लोक आपके सामने है, मेरे पीछे दोहराइए। न जन्मनूनं महतो न सोभगम् न वाक् न बुद्धिर्न कृतो तोषहेतु न वाक् न बुद्धिर्न कृतितोषहेतु तैर्यद्विसृष्टान् अपि नो वनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज न जन्मनूनं महतो न सोभगम् न वाक् न बुद्धिर्न कृतितोषहेतु तैर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज न जन्मनूनं महतो न सोभगम् गाइए सभी लोग प्रेम से। न वाक् न बुद्धिर्न कृतितोषहेतु तैर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकसः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज शकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। माताओं में से कोई पढ़ सकते हैं? न जन्मनूनं महतो न सोभगम् न बुद्धि न कृतितोष हेतु तैर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकसः
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित प्रति रविवार इस प्रीति भोज कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब भक्त यहाँ पर प्रतिदिन प्रति रविवार को भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। शास्त्रों में अनेक संतों के द्वारा यह कहा गया है, यदि हम इस जगत के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं और यहां तक कि मनुष्य जीवन के परम पुरुषार्थ भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता एक ही उपाय है और वह है भगवत कथा। इसलिए तो आचार्यों ने कह दिया, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है संसार के दुख क्लेश और दोषों से मुक्त हो जाना। इस जगत के अनेक प्रकार के कलह क्लेश दुख से मुक्त यदि होना चाहते हैं भक्तों, इस संसार के दुखों से वही मुक्त हो सकता है जिस व्यक्ति को इस संसार के दुखों का एहसास हुआ है। कई बार भक्तों के मन में यह होता है कि मेरी कॉलेज में वो लड़का है भक्त बन जाए, हमारे पड़ोस में वो रहते हैं वो भी भक्त बन जाए, हमारे फैमिली वाले भक्त बन जाए, लेकिन वो लोग भक्त तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक दुनिया के दुख का एहसास नहीं करेंगे। भगवान की शरण में जाने के लिए दुख का एहसास होना चाहिए और इसीलिए भगवान ने इस जगत को दुखालय संसार बनाया। अर्जुन, ये दुनिया मैंने बनाई और स्पेशली दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने के लिए ये जगत मैंने बनाया। और जिस व्यक्ति को जितने ज्यादा दुख का एहसास हो वो उतनी तीव्र गति से भगवान के चरणों में जा सकता है। अतः कई बार हमारे जीवन में दुख आ भी जाते हैं तो यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत गलत समय चल रहा है। हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने का यह अवसर आया है। तो संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए दुखों का एहसास चाहिए। रजोदिका कर्मोपरा दुखे च सुख मानिन, संसार में कुछ लोग दुख को ही सुख समझ बैठते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता है, जो कहते हैं दुनिया में आनंद है, चार दिन की चांदनी ऐश करो मौज करो, किसने कल देखा है उसका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं। क्योंकि आपने ऊंट को देखा है ना, कैमल, ऊंट होता है लंबी गर्दन होती है और विशेष करके रण प्रदेश में होता है। ऊंट जब जिस वृक्ष के पत्ते को खाता है उसे लगता है ये पत्ते कितने मीठे हैं, उसे लगता है कि मैं स्वीट राइस खा रहा हूं। लेकिन उस रेगिस्तान के उस वृक्ष के पत्ते में कोई टेस्ट नहीं है, कोई रस नहीं है। होता क्या है, उस पत्तों के साथ कुछ कांटे होते हैं, ऊंट जब उस पत्ते को खाता है साथ ही साथ वह कांटे उसके मुंह में चले जाते हैं, कांटे उसके मुंह में लगते हैं, अपना ही खून वह स्वयं पीता है। उस पत्ती के साथ वह अपना खून पीता है और उसे लगता है यह पत्ता कितना मीठा है। परंतु भक्तों, वो पत्ता मीठा नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं कि यह जगत मीठा है, इस जगत में सुख है भोग है, परंतु इस जगत में सुख नहीं भोग नहीं, इस जगत में दुख के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं भोग को भोग रहा हूं, लेकिन इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट राजा भर्तहरि ने वैराग्य शतक में लिख दिया, कि मैं एक दिन का हजारों हजारों दास दासी नौकर चाकर धन संपत्ति रजवाड़े का राजा था। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु मेरे लिए दुर्लभ नहीं थी और दुनिया की सभी वस्तु को मैं भोग कर यहां संन्यास लिया हूं। और उन्होंने बहुत सुंदर लिख दिया, मैं सोच रहा था कि मैंने अनेकों भोगों को भोगा लेकिन भोगा न भोगता वही मैं वो भोगता, मैंने भोगों को नहीं भोगा संसार के भोगों ने मुझे भोग लिया। तपसान तपता वही मैं वो तपता, मैं सोच रहा था मैं शराब पीता हूं, मैं सोच रहा था मैं सिगरेट पीता हूं लेकिन मैंने शराब को मैंने सिगरेट को नहीं पिया वह शराब और सिगरेट ही मुझे पी गई। मैं सोच रहा था मैं भोगों को भोग रहा हूं लेकिन भोग मुझे भोग लिए। संसार में जिस वस्तु में हमें सुख का दर्शन होता है परंतु भक्तों उस वस्तु में मात्र दुख ही दिखाई देता है, मात्र दुख है क्योंकि यह जगत असत है। इस जगत को ही भगवान ने नाम दे दिया संसार। और रोज सुबह जैसे ही भगवान के दर्शन खुलते हैं और भक्तों के मुख से यही शब्द निकलता है, ये नहीं निकलता है। अब जो मंगल आरती में आते हैं वो जानेंगे ना क्या निकलता है, संसार दावा। संसार दावा नलवी ढलोक, विश्वनाथ चक्र ठाकुर की यह रचना है। संसार नाम दे दिया इस जगत का, क्यों जानते हैं? ये संसार शब्द जो है संस्कृत शब्द है और ये संसार शब्द संस्कृति से बना है। इस जगत को संस्कृति कहा जाता है और संस्कृति का अर्थ होता है श्रुति माने सरकना, सरकना फिसलना, और संस्कृति माने सम्यक रूपेण सरकना। संसार का अर्थ होता है जो सरकता रहे, सरकती इति संसार। भक्ति संसार में सब कुछ सरक रहा है, हम देखते हैं ना हजारों लोग विरार से चर्चगेट सरक रहे हैं, अनेकों ट्रेन सरक रही है, रिक्शा सरक रही है, हम लोग बैठे बैठे भी सरक रहे हैं, बचपन से जवानी की ओर सरक रहे हैं, जवान लोग बूढ़े की ओर सरक रहे हैं, बूढ़े मृत्यु की ओर सरक रहे हैं, सब लोग सरक रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं नहीं हम नहीं सरकेंगे, और मान लो बुढ़ापा आ भी जाता है बाल सफेद हो जाता है काले करवा देते हैं, इसका अर्थ क्या है? सरकते हुए जीवन को पकड़ना चाहते हैं कि ये जीवन कहीं सरक न जाए, हम लोग बूढ़े न हो जाए, लेकिन हम लोग कितना भी पकड़ने का प्रयास करें ये पकड़ा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संसार है जिसका स्वरूप है सरकना। हम लोग चाहते हैं हमारे पास जो धन है वो स्टेबल हो जाए, वो पकड़ में आ जाए, लेकिन वो भी एक ना एक दिन सरक जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ये धन को हम बचा कर रखेंगे, जीते जी वो धन को लेकर चला जाता है, और यदि वो धन रहा तो हम लोग धन को छोड़कर चले जाते हैं। छोड़ना निश्चित है, सरकना निश्चित है, और ये छोड़ना ही सबसे बड़ा दुख है। तो इस प्रकार से हम दुखाली जगत में फंसे हैं, इन दुखों से यदि मुक्त होना चाहते हैं, भक्तों दुखों से मुक्त होना यह कोई बड़ी चीज नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाना ये सबसे बड़ी चीज है। चाहे दुखों से मुक्त होना चाहे या भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करना चाहे, हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या कहते हैं? राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, प्रेम सहित सो यह कथा, भरो श्रवण पूट कान। समझ में आया कुछ? संसार के दुखों से मुक्त होना चाहते हैं या भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं, सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुनना। जैसे ही हम कर्ण के माध्यम से भगवत कथा को सुनते हैं भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रेम की अवस्था में संसार के दुख का ज्ञान नहीं रहता है। प्रेम का नशा इतना तगड़ा है जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम आ जाता है, वह प्रेम उस व्यक्ति को मतवाला कर देता है। फिर वह भक्त संसार के दुखों से दुखी नहीं रहता है। उस भक्त के जीवन में एक ही दुख होता है, भगवान नहीं मिल रहा है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जिसके हृदय में प्रेम आ गया, उसे यह संसार की संपत्ति, संसार का धन दूर के समान दिखने लगता है। तो इस प्रकार भगवान की कथा भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली है। और प्रतिदिन यहाँ पर भगवत कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। आइए श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में, श्रीमद् भागवत का पांचवा स्कंद जो है स्थानम तत्व के अंतर्गत है। इस ब्रह्मांड में अनेक स्थानों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया और उनमें से एक है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का वर्णन करते हुए किम पुरुष वर्ष का वर्णन करते हैं, जहां पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। और हनुमान जी महाराज भगवान को बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। भक्तों, आज भी संसार में हजारों लोग भगवान को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन सब लोग अपने मन से, अपनी बुद्धि से स्तुति और प्रार्थना करते हैं। और हम जानते हैं हमारा मन कितना अच्छा है। हमारे इस थर्ड क्लास के मन से परम पवित्र शुद्ध भगवान को हम क्या स्तुति कर सकते हैं। वास्तव में भगवान को समझा है हनुमान जी ने, भगवान को जाना हनुमान जी ने, भगवान का आंतरिक प्रेम, आंतरिक संग प्राप्त किया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने जिस प्रकार से भगवान की स्तुति की है, अद्वितीय स्तुति, अद्भुत स्तुति। अतः अपनी स्तुति में ही हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र का सबसे परम रहस्य गुह्य तत्व खोल रहे हैं। इसके अगले श्लोक में, पिछले श्लोक में हनुमान जी महाराज एक तत्व का निरूपण कर रहे हैं। संसार के लोग समझते हैं भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर इसलिए आए क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत असुर बढ़ गए थे। जब जब हुई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, उस समय दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन ये अंदर की बात नहीं है, भगवान अंदर की बात अपने अंदर के भक्तों को करते हैं। ये बाहरी कारण है भगवान का, ये आंतरिक कारण नहीं है। भगवान के इस पृथ्वी पर आने का ये वास्तविक कारण नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मर्त्यवतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षावधा एव न केवलम विभो। वह विभु, वह परम पराक्रमी रावण को मारने के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ था। कई बार लोग कहते हैं कि रावण ने ब्रह्मा जी से, शिव जी से यह वर मांगा कि मेरी मृत्यु किसी से न हो, केवल दो लोगों को छोड़कर, वानर और मनुष्य। क्योंकि रावण को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये बंदर और मनुष्य जो है उसे तो मैं चुटकी में मसल सकता हूं, बाकी के लोगों को मारना मुश्किल है। और आचार्यों का कहना है कि रावण को आखिर भगवान को मारना ही था, तो भगवान ने सरस्वती देवी को आदेश दिया, रावण की जीवा पर बैठ गई और जब रावण मांग रहा था तो जीवा फिसल जाती है ना, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो रावण को भी यह बोल दिया बेचारा कि मैं किसी से न मरूं, वानर और मनुष्य को छोड़कर। और बोलने के बाद रावण को, चलो वानर और मनुष्य को तो हम लिपट लेंगे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आगे चलकर ये दोनों ही भारी पड़ गए। परंतु भगवान श्री रामचंद्र का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यदि रावण को मारने के लिए भगवान राम को अपने धाम से यहां पर उतरना पड़ता, विचार करो, जिस भगवान के एक इशारे मात्र से मया दक्षिण प्रकृति, एक इशारा भगवान कर दे अनंत कोटि ब्रह्मांड गिर जाए, भगवान के एक इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन हो जाए, जिस भगवान के आंख के इशारे से ब्रह्मांड का प्रलय और सर्जन हो सकता है, उस ब्रह्मांड में रहने वाले मच्छर जैसे रावण को मारने के लिए भगवान को अपने धाम से उतरने की जरूरत नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों को गिराने वाले भगवान केवल एक दो असुरों को मारने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आए। तो मानो हनुमान जी को कहा जाए, बताइए भगवान राम इस पृथ्वी पर क्यों आए, किस उद्देश्य से आए? तो हनुमान जी कहते हैं, मर्त्यवतारस तु ही मर्त्य शिक्षाम। भगवान श्री रामचंद्र का प्रथम उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने का यही था कि बोले इस पृथ्वी पर मर्त्यवतार अनेक मनुष्य रहते हैं, उस मनुष्य को मर्यादा धर्म का उपदेश देने के लिए, मर्यादा धर्म को अपने आचरण से सिखाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अन्यथा असुरों को तो वे अपने धाम में बैठे बैठे भी मार सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने अपने आचरण से मर्यादा धर्म का उपदेश दिया। किस प्रकार से एक पुत्र को पिता के प्रति कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र ने बताया दिखाया। अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए यदि राज रजवाड़े छोड़ने भी पड़े तो किस प्रकार से एक पुत्र को छोड़ देना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र ने बताया पुत्र के कर्तव्य को। किस प्रकार से एक पति को अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य निभाने चाहिए, ये भगवान श्री रामचंद्र ने बताया। अपनी पत्नी को पाने के लिए अनेकों हजारों असुरों का वध करना पड़े या समुद्र पर सेतु बांधना पड़े तो बांध देना चाहिए, परंतु पत्नी की रक्षा होनी चाहिए, भगवान ने बताया। और भक्तों ये बात सत्य है, समाज में स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। यदि समाज में स्त्रियों की रक्षा नहीं हुई तो अधर्म फैलने में देरी नहीं लगेगी। ये गीता का प्रथम अध्याय, और प्रथम अध्याय में ही अर्जुन की यही सबसे बड़ी चिंता रही कि हे कृष्ण, यदि मैं यहां पर युद्ध करूंगा और मैं मेरे गांडीर से ये सब को छिन्न भिन्न कर दूंगा तो इनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी, और वह विधवा पत्नी को किसी पति का सहारा नहीं मिलेगा, और पति का सहारा नहीं मिलने से जब कोई स्त्री किसी पति के पुत्र के या पिता के अंडर में नहीं रहती है तो वह अधर्मी हो जाती है। अधर्म अभी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय। हे कृष्ण कृपा करके मेरी बात को सुनिए, यदि मैं यहां पर युद्ध करूंगा तो पूरे देश में अधर्म फैल जाएगा। और कृष्ण जब अधर्म फैलता है ना भक्तों, इस संसार में अधर्म का पहला वार स्त्री के ऊपर होता है, अधर्म का पहला तीर स्त्री के ऊपर होता है। अधर्म अभी भवात् कृष्ण, अधर्म जब हमारे देश में हमारे समाज में प्रवेश करता है तो सबसे पहले स्त्रियों को दूषित कर देता है, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय। और स्त्रियां जब दूषित हो जाती है, स्त्रीषु दुष्टास्तु वाष्णेय जायते वर्ण संकर, स्त्रियां दूषित होने से उनकी प्रजा दूषित हो जाती है, और यदि प्रजा दूषित हो गई पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडो तक क्रिया, वो पूरे समाज को नरक की ओर लेकर चले जाते हैं। अतः स्त्रियों का ध्यान रखना भगवान श्री रामचंद्र ने बताया। जब इस प्रकार की बातें कही जाती हैं तो कई सारे लोग भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं, अच्छा भगवान श्री रामचंद्र ने यह बताया अपने पति पत्नी की रक्षा करनी चाहिए हजारों असुरों को मारकर या समुद्र पर सेतु बांधकर, तो फिर सीता को वन में क्यों छोड़ दिया? अब दोष देखने वाले तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, जिसके दिमाग और आंखों में दोष ही भरे हैं वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से दोष दृष्टि हमारे अंदर आ जाती है तो समझ जाना चाहिए ये भगवान और किसी भक्तों में दोष नहीं, ये दोष सर्वप्रथम हमारे अंदर है। जब हम पीले चश्मे पहनकर घूमते हैं तो दुनिया पीली दिखती है, और कहते ये दीवार पीली है, ये व्यक्ति पीला क्यों है, अरे वो पीला, अरे वो लोग पीले नहीं, तेरा चश्मा पीला है। चश्मे को उतारो, दोष दृष्टि को दूर करो, दुनिया बहुत शुद्ध दिखेगी। तो इस प्रकार कुछ लोग भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं, मानो राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया। कई बार ऐसा प्रश्न होता है, क्योंकि प्रसंग आया है इसलिए आपको कह दूं, भगवान श्री रामचंद्र ने जो भी कार्य किए धर्म से युक्त कार्य किए। वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र ने सीता को दुखी करके नहीं छोड़ा। आप सब जानते हैं रावण इत्यादि असुरों ने अनेक ऋषि मुनियों का वध किया, ऋषि मुनियों को काटा मारा, और ऋषि मुनियों का खून जो था एक घड़े में भरा, और उस समय ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया कि रावण यही खून तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। रावण डर गया और डरकर उस ऋषि मुनियों के खून से भरे हुए घड़े को पृथ्वी में जाकर छिपा दिया। और राजा जनक सोने के हल से जब पृथ्वी में खेती कर रहे थे, उसी समय वह खून से भरा हुआ घड़ा मिला और वहां से देवी सीता प्राप्त हुई, उसी घड़े से सीता जी का जन्म हुआ। वास्तव में देखा जाए तो देवी सीता जनक राजा की पुत्री नहीं, ऋषि मुनियों की कन्या है। देवी सीता जनक जी की पुत्री नहीं, ये ऋषियों की पुत्री है। जब जनक जी ने भगवान श्री रामचंद्र के साथ सीता का विवाह कराया और सीता जब गर्भवती हुई, तब देवी सीता ने अपने पति राम को कहा कि प्रभु जब किसी कोई स्त्री पहली बार गर्भवती होती है तब वो अपने पिता के घर पर जाती है, और प्रभु मेरे वास्तविक पिता राजा जनक नहीं, मेरे वास्तविक पिता तो वाल्मीकि ऋषि हैं, कृपया करके आप मुझे वाल्मीकि ऋषि के पास छोड़कर आइए। कहां धर्म है? यदि आंखों में दोष नहीं, यदि बुद्धि में दोष नहीं, तो सब कुछ धर्म युक्त दिखता है। तो इस प्रकार से ये धर्म की बातें थी। भगवान धर्म सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आए, किस प्रकार से एक भाई को दूसरे भाई के प्रति कर्तव्य निभाने चाहिए भगवान ने बताया। अयोध्या का राज्य है फुटबॉल की तरह। भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई भरत से कहते थे कि ये राज्य को आप रखो, भरत इस राज्य के राजा तुम बनो। भरत जी कहते थे मैं नहीं बन सकता हूं प्रभु, अयोध्या के राजा आप ही बन सकते हो। दोनों भाई एक दूसरे को कहते नहीं आप बनो, जहां पहले आपकी भावना हो, समझ जाना चाहिए यहाँ रामायण है, यहाँ प्रेम है, और जहां पहले मैं ये मेरा समझ जाना चाहिए वहां महाभारत है। उस हस्तिनापुर की गादी के लिए दुर्योधन और पांडव युद्ध करके मर गए, और यहां पहले आपकी भावना आप है। तो रामायण हमें यह सिखाती, भगवान ने यह दिखाया। पिताजी की संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा बहुत धन यहां वहां हो गया, तलवारें निकल जाती हैं, गर्दनें कट जाती हैं, मस्तक गिर जाते हैं, खून खराबा हो जाता है, और देखिए भगवान श्री रामचंद्र सारी संपत्ति तिलांजलि दे दी अपने भाई के लिए। और बहुत सुंदर भगवान श्री रामचंद्र ने अपने आचरण से सिखाया। जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास दिया गया, पूरी अयोध्या रो रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे, राजा दशरथ भी रो रहे थे। उस समय सबको शांत करते हुए आश्वासन देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जा रहे थे, सबको मिलते मिलते प्रभु अपने राज्य से निकल रहे थे। उस समय वशिष्ठ मुनि का आश्रम आया और वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान श्री रामचंद्र ने आशीर्वाद मांगा और भगवान श्री रामचंद्र का अपने भाई के प्रति प्रेम प्रकट हुआ। पूरी दुनिया ने देख लिया कि भाई से प्रेम करना सीखे तो प्रभु राम से। बहुत सुंदर बात बताई, हे वशिष्ठ जी मैं तो जा रहा हूं वन में, कुछ दिन के बाद मेरे भाई भरत यहां पर आएंगे, जैसे ही भरत यहां पर आएगा आप तुरंत उसे राज तिलक कर देना और मेरी ओर से उन्हें आशीर्वाद देना, और हो सके तो हे ऋषिवर ये खबर आप मुझे वन में भिजवा देना, मैं भी वन में रहकर कोल भीलों के साथ पशु पक्षियों के साथ मेरा भाई राजा बना है ये खुशियां को मनाऊंगा। आप ध्यान रखना मेरे भाई का पूरा संपत्ति राज रजवाड़े सौंप दी। ये है प्रेम, ये सिखाया भगवान श्री रामचंद्र। किस प्रकार से अपने अनुचरों का ध्यान रखना, किस प्रकार से अपनी प्रजा को सुखी करना, भगवान श्री रामचंद्र ने बताया। और यही बताने के लिए भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर आए। ये हनुमान जी महाराज भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं। और फिर इस श्लोक में जो आपके सामने सातवां श्लोक है, इस श्लोक में हनुमान जी महाराज भगवान के गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री रामचंद्र को यदि पाना है, भगवान को प्राप्त करना है। कई बार लोग कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करनी होगी, ये करना होगा, ये करना होगा। तो भगवान राम को प्राप्त करने के लिए कहते हैं न जन्म मूलम। भगवान राम की प्राप्ति करने के लिए उच्च कुल में जन्म की आवश्यकता नहीं है, श्लोक में लिखा है न जन्म मूलम। चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी कभी किसी कुछ लोगों का उच्च कुल में जन्म होता है तो बहुत अभिमान आ जाता है, हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं। परंतु भगवान की प्राप्ति करने के लिए कुल मायने नहीं रखता है, न जन्म मूलम। ऐसा नहीं जो उच्च कुल में जन्म लिया वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। किसी भी कुल में, यहां तक शूद्र कुल में भी यदि कोई जन्म ले ले, वो भी भगवान राम को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान राम बड़े कृपालु हैं। वह किसी का जन्म नहीं देखते, वह तो मात्र भक्ति देखते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में यह बात आई। बताइए शबरी जी का कौन सा बड़ा कुल था? कोई बड़े कुल की नहीं थी, पूर्व जन्म में वह राजकुमारी थी, परंतु इतने बड़े परिवार में, राजा के घर में जन्म लेने से साधु संतों का समागम नहीं कर पाए। होता है जो पैसे वाले होते हैं, जो बहुत बड़े हो जाते हैं, पद प्रतिष्ठा आ जाती है, वह संतों का संग नहीं कर सकते हैं। एक दिन उनके मन में हुआ, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी सत्संग नहीं हो पा रहा है, ये जीवन रखने लायक नहीं है। तब देवी शबरी की मरते मरते ये भगवान से प्रार्थना हुई, प्रभु दूसरा जन्म देना हो तो किसी नीच कुल में जन्म देना, कम से कम साधुओं का संग तो कर सको। तब इनका दूसरा जन्म शबरी के रूप में हुआ। भक्तों ये शबरी इनका नाम नहीं है, ये शबरी जो है जाति वाचक नाम है। एक ऐसी जाति जिसका नाम है शबर जाति। और शबर किसे कहते जानते हैं? जो सुअर को खाते हैं, पिग, जो डुक्कर को खाते हैं, जो सुकर का मांस खाते हैं, उसे शबर कहा जाता है। ऐसे शुकर जाति में इसका जन्म हुआ है। जन्म से ही पशुओं की हिंसा, मांस इत्यादि का। एक दिन के बाद इनकी उम्र हो गई, 16 साल की उम्र हुई और इनके माता पिता ने इनका विवाह तय किया। और विवाह के अगले दिन अनेक बकरे उनके घर पर लाकर बांध कर रखे थे। देवी शबरी ने देखा कि आज तक इतने सारे बकरे नहीं, आज इतने सारे बकरे क्यों? अपनी माँ के पास गई, माँ ये सब क्या है? बोले बेटा हमारे परिवार में यह विधि, यह रिवाज है, जब बारात लड़के वालों की बारात आती है तब उसे बकरे का मांस खिलाया जाता है। तब शबरी के मन में हुआ कि मेरे कारण, मेरे एक के कारण इतने सारे जीवों की हत्या। शबरी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। भक्तों कभी कभी ये दया जो है भगवान की भक्ति के मार्ग में अनुकूल हो जाती है। और दया धर्म का मूल है, धर्म के चार चरण हैं और उनमें से एक है दया। शबरी के हृदय में दया आई, मेरे कारण इतने सारे पशुओं की हिंसा होगी। उसी रात और रात, उसी दिन रात को ही शबरी अपने स्थान, अपने घर को छोड़कर चली गई, गोल वन में प्रवेश कर ली। और उस वन में एक ऋषि मुनि का आश्रम, जिसका नाम था मातंग ऋषि, उस ऋषि मुनि के आश्रम में गई। ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे, उनके पहले शबरी उनके आश्रम को साफ कर देती थी और चली जाती थी। ऋषि मुनि देखते थे कि हमारे जगने से पहले आश्रम को कौन साफ कर रहा है। एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन हुआ, नाथन ऋषि ने कहा कि अब तो ढूंढना ही पड़ेगा, इतने दिनों से हमारी सेवा कौन कर रहा है। हम होते तो सोचते हैं चलो कोई कर ही रहा है तो अच्छी बात है, अब ढूंढने की क्या जरूरत है, मुफ्त में काम हो रहा है तो कर लो। इस संसार में प्राय हमारी ऐसी वृत्ति हो गई है, मुफ्त में काम हो जाए तो पैसे नहीं देना चाहते हैं। लेकिन संत साधु भक्त महात्मा में यह बुद्धि होती है कि आज यदि हम किसी के कर्म का फल नहीं देते हैं, आज यदि हम किसी से मुफ्त में फ्री में मेहनत कराते हैं तो आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में उनकी की हुई मेहनत का फल हमको देना होगा। कर्म बंधन हमारे सिर पर लगेगा, ये कर्म का नियम बहुत कड़ा होता है। मातंग ऋषि समझ गए दूसरों की सेवा लेना नहीं चाहते थे, वे जानते थे कि यदि हम दूसरों की सेवा लेंगे तो हमारी भक्ति हमारी साधना कम हो जाएगी। भक्तों वास्तव में जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं वो सबसे बड़े चोर माने जाते हैं। भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कोई चोरी करके चला ना जाए। सीधा शास्त्र में कहा है कि जो हमारी सेवा कर रहा है वो सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि दुनिया के चोर तो ज्यादा से ज्यादा क्या चुराएंगे, दुनिया के चोर पैसे चुराएंगे, धन संपत्ति चुराएंगे, लेकिन जो हमारी सेवा करके चला जाता है ना, वो हमारी साधना और हमारी भक्ति को चुरा कर चला जाता है। श्री राधा के द्वारा भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौर निताय की, श्री द्रौपदी की। जो लोग हमारी सेवा करते हैं हमारी साधना हमारी भक्ति को चुरा कर भाग जाते हैं, ऐसे चोरों से सावधान रहना चाहिए। भक्तों ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। दही चिड़ा उत्सव में रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर संबोधन दिया गया, बोले चोर दूर से प्रणाम कर रहे हो। इस प्रकार से हमारी सेवा कोई कर न ले, ध्यान रखना चाहिए। मातंग ऋषि ने कहा ढूंढो कौन है, ये सेवा कौन कर रहा है। तब मातंग ऋषि ने कैसे भी करके शबरी को आखिर पकड़ ही लिया। शबरी ने प्रणाम किया, सारी कथा बताई और मातंग ऋषि ने अपने बहुत बड़े आश्रम में छोटी सी कुटिया दे दी, बोले आप यहीं पर रहो। रोज कथा कीर्तन होता था, शबरी भगवान की कथा कीर्तन में मग्न होती थी। एक दिन की बात, मातंग ऋषि अपने आश्रम को छोड़कर जा रहे थे, देह का त्याग कर रहे थे। उस समय शबरी के आंखों में आंसू आ गए, प्रभु आप मत जाइए, आप चले जाओगे तो मुझे कथा कौन सुनाएगा, मैं सत्संग कैसे करूंगी, साधु और महात्मा की सेवा कैसे करूंगी, आप मत जाइए। तब जाते जाते मातंग ऋषि ने इतना ही कहा कि देवी शबरी, भगवान की प्राप्ति करने के लिए आज मुझे यह देह छोड़कर भगवान के पास जाना पड़ रहा है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए मुझे यहां से भगवान के पास जाने का कष्ट मैं ले रहा हूं। लेकिन शबरी तूने महात्माओं की सेवा की है, अतः तुझे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं वादा करता हूं, तुझे आशीर्वाद देता हूं कि भगवान एक दिन चलते चलते तेरे आश्रम में आएंगे, तुझे दर्शन देंगे, क्योंकि तूने महात्मा की सेवा की है। भक्तों शास्त्र खोलकर देख लीजिए, इस संसार में भगवान की प्राप्ति करनी है ना। भगवान ऋषभ देव जब अपने पुत्र को उपदेश दे रहे थे, नायम देहो देह भाजा नृलोके, हे मेरे पुत्र ये मनुष्य जीवन कुत्ते और पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ये मनुष्य जीवन मिला है दिव्य तपस्या करने के लिए, भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए, भगवान विष्णु की प्राप्ति करने के लिए। तब भगवान ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरत, कवि, हरि, अंतरिक्ष, नव योगेश्वर, बड़े बुद्धिमान थे, अपने पिता ऋषभ देव जी को पूछा, पिताजी ये बात सही है, मनुष्य जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तो बताइए भगवान कैसे मिलेंगे। तब भगवान ऋषभ देव ने बहुत सुंदर सूत्र दिया कि हे मेरे पुत्रो, यदि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो एक ही कार्य, महत सेवा द्वारम आहु विमुक्त। महत सेवा, महताम, बड़े बड़े भक्त महात्माओं की सेवा जो है विमुक्ति का खुला द्वार है। जब कोई व्यक्ति महात्माओं की सेवा करता है तो उसे सीधी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। यहां पर शबरी ने महात्माओं की सेवा करके भगवान को प्राप्त करने का आशीर्वाद कर दिया। और एक दिन ऐसा ही हुआ, भगवान श्री रामचंद्र सीता को ढूंढने के बहाने शबरी जी के आश्रम में आए। देखिए, संसार में जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं निश्चित भगवान उनको दर्शन देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग भक्ति करने के बाद माया में भी फंस जाते हैं। कभी कभी हम लोग कथा सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद उस प्रवचन को भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भक्ति करने के बाद भक्ति से पतन भी हो जाता है, छोड़ भी देते हैं। कभी कभी कुछ लोग माला जपने के बाद, भक्ति करने के बाद भगवान भक्ति को छोड़ देते हैं, परंतु भगवान कभी भी अपने भक्त को नहीं छोड़ते, नहीं भूलते। यदि किसी ने थोड़ी भी भक्ति की है, स्वल्पम अपि धर्मस्य, थोड़ी भी सकृत एवं, थोड़ी भी यदि कोई भक्ति कर लेता है तो भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। और इसका ज्वलंत प्रमाण है शबरी, ज्वलंत प्रमाण मुचकुंद महाराज। मुचकुंद महाराज भगवान के भक्त पर वरदान लेकर सो गए थे। मुचकुंद महाराज भक्त सो रहे हैं और भगवान भाग रहे हैं, कथा आप सब लोग जानते हैं। भगवान भागते भागते आए, मुचकुंद महाराज को दर्शन दिया। पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र की भूमि पर सो रहे हैं और भगवान खड़े हैं। इस प्रकार जो लोग भगवान के भक्तों की भक्ति करते हैं निश्चित भगवान उसे दर्शन देते हैं। तो कई बार मन में प्रश्न होता है, क्या भगवान की भक्ति करने से भगवान नहीं मिलते हैं? भगवान की भक्ति करने से भगवान मिलते हैं, उसमें कुछ संशय है। और मिलेंगे तो भी बहुत देरी से मिलेंगे। लेकिन यदि भगवान के भक्तों की भक्ति की जाए तो भगवान तुरंत मिल जाते हैं। और इसके ज्वलंत प्रमाण महाराज अम्बरीश और श्रीमद् भागवतम में के अष्टम स्कंध में गजेंद्र कथा आप सब लोग जानते हैं। गजेंद्र गया था सरोवर में जल पीने के लिए, जल पिया, अपनी पत्नियों को पिलाया, अपने पुत्रों को पिलाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक गृहस्थी का धर्म है अपनी पत्नी और पुत्र का पालन कर। लेकिन एक गृहस्थी को चाहिए अपने पुत्र पत्नी अपने कुटुंब में इतना रचा पचा न हो जाए ताकि भगवान को और लक्ष्य को भूल जाए। और गजेंद्र के जीवन में ऐसा ही हुआ, पत्नी पुत्र को पानी पिलाया, लेकिन अब उस सरोवर के जल में जल उठा उठा कर, जैसे लोग आजकल टीकू जीनी वाड़ी सूरज वाटर पार्क जाकर पानी में नाचते हैं कूदते हैं, वैसे नाचने लगा, कूदने लगा। जब गजेंद्र उस सरोवर में जल उठा उठा कर अपनी पुत्र और पत्नियों के साथ खेलने लगा, सरोवर का जल आंदोलित होने लगा और उस जल में एक मगरमच्छ रहता था। वग्राह वह मगरमच्छ बाहर आया, गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया और वह मगरमच्छ खींचते हुए गजेंद्र को सरोवर की गहराई में लेकर गया। प्रारंभ में तो गजेंद्र को इतना कष्ट नहीं हुआ, बोले ऐसे तो आते रहते हैं, दो तीन बार पांव उठाकर फेंकने का प्रयास, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे करके वह मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई, गजेंद्र की शक्ति कम हुई। मगरमच्छ खींचते हुए गजेंद्र को बीच सरोवर में लेकर गया, धीरे धीरे गजेंद्र डूब रहा है। और एक ऐसी स्थिति आई, गजेंद्र का सारा शरीर डूब गया, बस केवल मस्तक डूबना बाकी है, बस चंद सेकंड बची हैं, कुछ ही सेकंड में गजेंद्र की मृत्यु उनके सामने। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं व्यवस्थितो बुद्धिया समाधाय मनोरिधि जजाप परमं जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। उस मरते समय, उस मृत्यु की घड़ी में गजेंद्र जी को पूर्व जन्म में याद किया हुआ भगवान की स्तुति स्त्रोत याद आ गया। और मरते हुए गजेंद्र ने भगवान को स्तुति की, प्रार्थना की, बहुत सुंदर स्तुति। और उस गजेंद्र की स्तुति ही के शब्द जो थे, कई बार हमारे मन में होता है हम लोग यहाँ हरे कृष्ण जपते हैं, भगवान सुनते होंगे क्या? भगवान कभी सुनते होंगे? हाँ यदि मन में ही बोलते रहेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम लोग मन में लेते हैं, यदि मन में बोलते रहेंगे तो शायद नहीं सुनेंगे, लेकिन यदि जोर जोर से बोलेंगे तो निश्चित भगवान सुनेंगे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे
हरे हरे राम हरे राम।
भगवान की बात छोड़ दीजिए, मान लो हमारे पड़ोस में कोई व्यक्ति रह रहा है, हम नीचे खड़े रहकर पड़ोसी को पुकारे, थोड़ा जोर से बुलाए, एक दिन दो दो घंटा बुलाए, महेश भाई महेश भाई महेश भाई, एक दिन में दो घंटा रोज सुबह जगकर महेश भाई को बुलाइए, एक दिन दो दिन पांच दिन दस दिन, हो सकता है वो महेश भाई थोड़े अकड़ू है, थोड़े टेढ़े है, वो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी पत्नी उनको कहेगी, पतिदेव बेचारा रोज बुला रहा है, एक बार तो दर्शन दे दो। वैसे हो सकता है हमारे पुकारने से, हमारे बुलाने से तीन जगह से टेढ़े है, भगवान शायद हमारे शब्द के ऊपर गौर न करे, लेकिन यदि हम बार बार पुकारते रहेंगे तो मां का स्वभाव, मां का हृदय पिघलेगा और श्रीमती राधा रानी कहेंगी प्रभु एक बार तो एक बार दृष्टि कर लीजिए। और भक्तों इसीलिए जब हम कृष्ण को पुकारते हैं ना, उसके पहले राधा का नाम लेते हैं, हरे
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे।
हरे का अर्थ होता है श्रीमती राधा रानी, राधे भाव यही है, राधे ये थोड़े टेढ़े हैं, सीधे सीधे जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप तो हमारी माँ के समान, आप उनको जरा मनाइए। निश्चित गजेंद्र हाथी के शरीर में था, जब हाथी की भाषा भगवान जान लिए, हम तो मनुष्य हैं। गजेंद्र जी ने जैसे ही भगवान का नाम लिया, वो भगवान का नाम इस ब्रह्मांड को भेद कर भगवान के धाम में चला गया और भगवान अपने धाम से उतरे हैं। आचार्य गण वर्णन करते हैं, भगवान तेज गति से आए, लक्ष्मी जी पूछती रह गई प्रभु कहां जा रहे हो, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा करने में इतने उत्कंठित थे, इतने त्वरा से, इतनी तेज गति से भगवान निकले। संतों का कहना है भगवान को जवाब देना था लक्ष्मी जी को, और जवाब देते हुए भगवान ने हा कहा, मैं जा रहा हूं हाथी के पास, लेकिन हा लक्ष्मी जी को कहा थी, बोलते बोलते तो पहुंच गए हाथी के पास, तुरंत भगवान पहुंच गए, सुदर्शन चक्र धारण किया और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का मस्तक काट लिया और गजेंद्र को ग्रह के मुख से अलग कर दिया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं वह ग्रह गंधर्व रूप धारण करके भगवान के धाम में चला गया और गजेंद्र जी फिर से स्तुति शुरू की। भगवान के आने से पहले भी स्तुति और भगवान के आने के बाद भी स्तुति, अनेकों घंटे स्तुति किए, चार पांच घंटे स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा ठीक है गजेंद्र मैं प्रसन्न हूं, और सब शरीर उसी हाथी के शरीर से को भगवान गरुड़ जी के ऊपर बिठाए और अपने धाम में लेकर चले गए। लेकिन भक्तों यहां पर एक सिद्धांत का वर्णन हो रहा है कि देखिए पूर्व जन्म में वस्त्रोत याद किया गजेंद्र ने, सरोवर में फंसा गजेंद्र, सारी चिंता टेंशन उठाया गजेंद्र ने, भगवान को पुकारा गजेंद्र ने, लेकिन गजेंद्र के कई घंटे पहले ग्राह भगवान के धाम में चला गया। समझ में आ रही है बात? सारी मेहनत सारा परिश्रम गजेंद्र ने उठाया, लेकिन भगवान के धाम में गजेंद्र से पहले ग्राह चला गया, न तो ग्राह ने कुछ किया, न मेहनत न परिश्रम, कुछ नहीं, गजेंद्र से पहले वह ग्राह भगवान के धाम में। परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, इस संसार में जो लोग भगवान को पुकारते हैं उनको तो भगवान की प्राप्ति होती ही है, लेकिन जो लोग भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं वो तो उनके पहले भगवान के धाम में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं महत सेवा द्वार माहो विमुक्ते, महात्माओं की सेवा करने से भगवान हमें दर्शन देने के लिए आते हैं, भगवान का दर्शन तुरंत हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, उस चैतन्य चरितामृत की टीका के आचार्य लिखते हैं, भाग्यवान जीव का अर्थ क्या है? इस संसार में भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली का अर्थ होता है जिस पर महात्माओं का आशीर्वाद है, महात्माओं की कृपा है। महात्मा की कृपा से ही कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग सकता है। महत कृपा के बिना भगवान की भक्ति में कोई आ नहीं सकता है और भगवान की भक्ति में कोई टिक नहीं सकता। ये महत कृपा जो है भक्ति के प्रारंभ से लेकर अंत तक साथ में होनी चाहिए। और ये महत कृपा कैसे मिलती है? यही श्रवण कीर्तन से, प्रयास से। जब हम भक्ति का प्रयास करते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, रात दिन जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे प्रयास को देखकर महात्मा गण हम पर कृपा करते हैं और उनकी कृपा के बल से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं महात्माओं की कृपा को छोड़कर भक्ति में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि भक्ति जो है एक लता के समान है। भक्ति लता बीज, आप सब जानते हैं ना, भक्ति एक लता के समान है, वृक्ष के समान नहीं। और भक्तों, लता कितनी भी बड़ी हो उसे किसी ना किसी के सहारे की आवश्यकता होती है ना। मनी प्लांट आप अपने घर पर उगाते हो तो वह उसे उगाने के लिए बीच में लकड़ी डालनी पड़ती है या कुछ और चीज डालनी पड़ती है, और आप कुछ ना डालो तो वो ऑटोमेटिक दीवार के सहारे को लेकर आगे बढ़ती है। तो उस लता को आगे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। बिना सहारे के जैसे वह लता ऊपर नहीं उठ सकती है, वैसे ही बिना महात्माओं की कृपा से कोई भक्त भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। अतः भक्ति में आने के लिए भी महात्मा की कृपा, और भक्ति में टिकने के लिए भी महात्मा की कृपा, और भक्ति में प्रगति करने के लिए भी महात्मा की कृपा। और महात्मा की कृपा मिलेगी उनकी सेवा करने से, महत सेवा। तो इस प्रकार मातंग ऋषि आशीर्वाद दिए और भगवान श्री रामचंद्र एक दिन चलते हुए शबरी जी के आश्रम में आए। शबरी जी की भक्ति धन्य है। गुरु जी ने कह दिया भगवान आएंगे तो पूर्ण विश्वास था, और यह नहीं पता है कब आएंगे। शबरी को लगा कल ही आने वाले, गुरु जी ने कहा है तो कल ही आएंगे। तो शबरी जी दूसरे ही दिन मार्ग को साफ करके बहुत सुंदर फूल बिछाकर, मेरे प्रभु आने वाले हैं, पूरी तैयारी करके फल फूल लाकर तैयार रहे, और सुबह से लेकर रात तक देखी परंतु प्रभु नहीं आए। आज नहीं आए तो चलो कल आएंगे। दूसरे दिन उतनी ही त्वरा से, उतनी उत्कंठा से मार्ग को सजाना, फल फूल को लाना, सुबह से लेकर शाम तक राह देखती रही भगवान ने। तीसरे दिन बोले कल नहीं आए, आज तो आएंगे। चौथे दिन, पांच, छह, सात, दस, पंद्रह, बीस, एक साल, दो साल, भक्तों 60 साल बीत गए, और प्रतिदिन उतनी ही लालसा, उतनी उत्कंठा, उतनी त्वरा। और हम लोग, गुरु जी ने यदि कहा होता कि भगवान मिलेंगे 2 महीने के बाद, यदि भगवान न मिलते, ये गुरुजी भी झूठे हैं और भगवान भी, छोड़ो भक्ति कौन करेगा। हमारी श्रद्धा इतनी नाजुक है, न तो हमको गुरु के ऊपर विश्वास है न भगवान के ऊपर, लेकिन शबरी को अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास था। आएंगे, गुरु ने कहा है, निश्चित आएंगे, और गुरु की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, आते हैं। और एक दिन भगवान श्री रामचंद्र आ गए, आए, और शबरी ने बहुत सुंदर बात, शबरी ने वैसे तो बहुत कुछ कहा, लेकिन इस श्लोक के अनुसार शबरी जी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा जीवन पापमय बीता है और मेरा जन्म अधम परिवार में हुआ है, मेरा कुल भी अधम है और जन्म से मैं स्त्री हूं, नारी तो जन्म से ही, मैं नारी अपावन, प्रभु जी तो पावन, मैं तो जन्म से ही अपावन अपवित्र हूं, और उसके ऊपर अपवित्र परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे कर्म भी अपवित्र है, अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं। परंतु भगवान श्री रामचंद्र ने उस समय शबरी को कहा कि देवी शबरी, मैं मेरे भक्त का कुल नहीं देखता हूं, मैं मेरे भक्त की जाति नहीं देखता हूं, मैं मेरे भक्त का जन्म नहीं देखता हूं, मैं तो मेरे भक्त का भाव देखता हूं। भाव क्या? भगवान भाव देखते, भाव ग्रही जनार्दन, सभी तुम्हारा भाव श्रेष्ठ है, उच्च भाव। और भगवान ने यहां तक कह दिया कि हे उद्धव, मेरे भक्त मुझे जितना प्रिय है, मेरी पत्नी होने के बाद भी लक्ष्मी मुझे उतनी प्रिय नहीं है, मेरा पुत्र होने पर भी ब्रह्मा मुझे उतना प्रिय नहीं है, अरे मेरा स्वरूप होने पर भी शिव जी मुझे इतने प्रिय नहीं है जितने प्रिय मेरे भक्त है। मैं मेरे भक्त से इतना प्रेम करता हूं। फिर उस भक्त का जन्म भले शबर परिवार में हुआ हो, सुपच परिवार में हुआ हो, वह भक्त भक्ति से महान है। और गीता में कृष्ण ने सिद्धांत दे दिया, अपि चेत सु दुराचारो। कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो, कितना भी दुराचार, दुर्व्यवहार, दुराचरण किया हो, लेकिन वह भक्ति करने लगता है, भजते माम अनन्य भाव। यदि कोई व्यक्ति कितना भी पापी हो, लेकिन वह व्यक्ति वह कैसे भी करके, कुछ भी करके, किसी भी बहाने कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन वह साधु है। क्या कहते हैं? साधु। और हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, ये भक्ति करने लगा है, सो चूहे मार कर बिल्ली चली हज को, मुख में राम और बगल में छुरी, कल तो ये शराब पीता था, कल तो ये गांजा पीता था, कल तो ये गुटखा खाता था। देखिए भगवान की मनोधारणा क्या है और हमारी मनोभावना क्या है। भगवान कहते हैं आज वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति कर रहा है तो वह साधु है, उसका भूतकाल कैसा भी क्यों ना हो। और यहां तक कह दिया अपि चेत सु दुराचारो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो बहुत बड़ा पापी, इसने तो किसी का खून किया है। अरे भगवान ने कह दिया खून तो बहुत छोटी चीज है, सु दुराचारो, सुष्टु रूपेण दुराचारो। इस संसार में कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, यदि किसी ने किया हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाव, ये अर्जुन यदि वो मेरी भक्ति करने लगता है तो साधु एवं समंतव्य, तो वह साधु है। मंतव्य उसे साधु ही मानना होगा, सम्यक व्यवस्थित हो इसे, क्योंकि उसकी बुद्धि व्यवस्थित हो चुकी है। पर मानो अर्जुन कहे कि ऐसे लोगों को कोई साधु नहीं मानेंगे तो भगवान ने कहा 45 मिनट के बाद देख लेना, जो मेरे भक्तों को साधु नहीं मानते हैं 45 मिनट के बाद रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा, महाभारत का युद्ध, मैं सबको मरवा डालूंगा साधु को जो साधु नहीं समझता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि संसार में कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं, अपने कर्म से बड़ा होता है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र को प्राप्त करने के लिए या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए न जन्म मूलम, बड़े कुल में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, भक्ति करने की आवश्यकता। न जन्म नूनम महत न जन्म न सोबतम, भगवान की प्राप्ति करने के लिए सुंदरता की आवश्यकता नहीं। अब बताइए भगवान श्री रामचंद्र की प्राप्ति करने के लिए काग भूषणी जी की क्या सुंदरता थी? पक्षियों में सबसे बुरा कोई दिखने वाला है तो कौवा, उसकी वाणी भी काका कान में लगती है, ऐसे काग भूषणी जी भगवान को पा गए, किसी भी प्रकार की सुंदरता नहीं थी लेकिन फिर भी पा गए। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान की भक्ति थी, भक्ति से भगवान मिलते हैं। रामायण में प्रसंग है जब भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ, अनेक ऋषि मुनि महात्मा भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे। कौशल्या जी के मन में प्रश्न हुआ कि ये बालकों के जन्म के पहले महात्माओं को ढूंढना पड़ता था, जब भंडारा करना होता था तो महात्माओं को गली गली में जाकर ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता था, लेकिन जिस दिन से ये बालक का जन्म हुआ है उस दिन से महात्माओं की लाइन लग गई, महात्माओं का मेला लग गया हमारे अवध में। आखिर बात क्या है? एक दिन कौशल्या ने महात्माओं को पूछ लिया, बात क्या है, आजकल इतने सारे महात्मा क्यों आ रहे हैं? तब महात्माओं ने कहा, देवी कौशल्या आप जानती नहीं हो, हम लोग निराकार निराकार ब्रह्म का ध्यान कर करके थक गए, मर गए, लेकिन आज तक उतना सुख प्राप्त नहीं हुआ जितना तेरे लाला का दर्शन करके हमें प्राप्त हो रहा है। देवी कौशल्या हम क्या बताए, हम लोग का पूरा जीवन चला गया ये निराकार ब्रह्म निराकार ज्योति का ध्यान करते हुए, लेकिन वह ब्रह्म और ज्योति का ध्यान करने में उतना सुख नहीं मिला जितना सुख ये राघव ये रघुनंदन तुम्हारे पुत्र राम का दर्शन करने में मिल रहा है। देवी हमारे मन में तो ऐसा हो रहा है, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इस अयोध्या के दीवार का एक छोटा सा पत्थर बना दे ताकि पत्थर बनकर भी हम तुम्हारे पुत्र राम का दर्शन करते रहेंगे। भगवान की कृपा होगी जब हमें यहाँ का पत्थर भी बनने मिल गया। मानुष हो तो वही रसकानी। इस प्रकार से महात्मा गण आए, भगवान का दर्शन करते हुए भक्त कैसे रोक सकते हैं। शिवजी ही राम कथा अपनी पत्नी को सुना रहे हैं, देवी पार्वती जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ तो प्रभु का दर्शन करने के लिए हिमालय से मैं उतरा और मानसरोवर से कालभूषणी जी भी रास्ते में मिल गए और मैं और कालभूषणी जी दोनों दर्शन करने के लिए गए, लेकिन दोनों का रूप कुरूप वो ठहरे कौवे के स्वरूप में और मैं ठहरा इसे बहुत ही लगाए हुए इसे अमंगल वेश। तब प्रभु का दर्शन करने के लिए हमने जोगी का रूप धारण किया, जोगी का रूप धारण करके हम गए, लेकिन फिर भी दिखने में उतने ही कुरूप लग रहे थे। देवी कौशल्या को हमने बहुत निवेदन किया, दर्शन कराओ दर्शन कराओ, दर्शन नहीं करने दिया नहीं करने दिया। बार बार विनंती करने पर भी जैसे देवी यशोदा ने शिव जी को दर्शन नहीं दिया, वैसे यहाँ कौशल्या ने भगवान राम का दर्शन नहीं दिया। तब निराश होकर मैं और कालभूषणी जी दोनों सरयू तट पर जाकर बैठ गए और उस समय हमने एक कपट किया, चोरी की। बोले क्या? बोले कालभूषणी जी को मैंने मेरा चेला बनाया और मैं बन गया तांत्रिक और मंत्र का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार से हम लोग वहां बैठे थे और भक्त को भगवान का दर्शन करने की जितनी उत्सुकता होती है उससे कोटि गुना ज्यादा भगवान को अपने भक्त का दर्शन करने की उत्सुकता है। जैसे मंगला आरती में भक्त लोग आते हैं सोचते हैं हम पहले ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, जैसे ही पट खुलेगा हम दर्शन करेंगे। हमारे मन में जितनी उत्कंठा होती है उतनी उत्कंठा उससे कोटि गुना ज्यादा उत्कंठा श्री राधा गिरधारी को होती है। कब ये मेरा भक्त बिस्तर से खड़ा होगा और मेरे सामने खड़ा रहेगा। राधा गिरधारी जी बिल्कुल तैयार होकर खड़े रहते हैं कि भक्त लोग हमें देखेंगे दर्शन करेंगे और हम उनको देखेंगे। और इस चर्म चक्षु से हम भगवान को क्या देख सकते हैं? इस चर्म चक्षु से तो भगवान की मूर्ति भी हमें पत्थर के रूप में दिखाई देती है और भगवान के सामने भगवान का दर्शन करने का मुख्य भाव तो यह है, प्रभु मैं तो आपको नहीं देख सकता हूं लेकिन आपकी तो बड़ी बड़ी आंखें हैं और उसमें भी जगन्नाथ जी हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। मैं आपको नहीं देख सकता हूं लेकिन आप तो मुझे देख सकते हैं, आप मेरी हाजिरी लगा दीजिएगा कि मैं आ चुका हूं। तो इस प्रकार से जैसे ही शिव जी का कालभूषणी जी को वहां से निकाला गया, भगवान श्री रामचंद्र रोने लगे। किसी सखी ने आकर कहा लगता है किसी की नजर लग गई है। कौशल्या ने कहा नजर उतारने वाले को लेकर आओ। सरयू के किनारे ये दोनों गुरु चेला बनकर बैठे थे। बोले आप नजर उतारते हो? बोले हाँ, एक बार उतार दे जीवन भर तक उतर जाती है। क्यों चेला? बोले हाँ गुरु जी। चेला गुरु दोनों तैयार हुए, दोनों गए कौशल्या के महल में। बोले नजर ऐसे नहीं उतरती है, बालक को हमारे सामने लाओ। बालक को सामने लाया गया और शिव जी के हाथों में उस बालक को दे दिया। शिव जी ने अपने हाथ में लिया, शिव जी ने इशारा किया इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, चरण में मस्तक झुका दो। कालभूषणी जी ने चरण में मस्तक झुकाया, दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने सोचा आज तक भगवान के चरणों से भगवान के चरण को स्पर्श होकर जो जल निकला है उस जल को मस्तक में धारण किया और यह शिव गंगाधर बन गया, वही भगवान के साक्षात चरण आज हमारे मस्तक पर आ गए, आज मैं धनिया की धनी हो गया। परम पावन। और हनुमान जी महाराज ने लिख दिया, अपनी स्तुति में कह दिया कि उस भगवान श्री रामचंद्र को प्राप्त करने के लिए सुंदरता की आवश्यकता नहीं, हृदय में भक्ति की आवश्यकता है। यदि हृदय में भक्ति हो तो भगवान कुरूप व्यक्ति को भी प्राप्त हो सकते हैं। बताइए कुब्जा में कौन सी बड़ी सुंदरता थी? कुब्जा में कोई सुंदरता नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान उनको प्राप्त हो गए। आगे हनुमान जी महाराज कहते हैं नवाक, भगवान को प्राप्त करने के लिए वाक चतुराई की भी आवश्यकता नहीं। कुछ लोग बोलने में बहुत पटु होते हैं, वाणी बहुत अलंकृत होती है। जरूरत नहीं कि वाणी अलंकृत हो, बोलने में चतुराई हो, वाक शक्ति हो। यदि ये नहीं भी हो तो भी भगवान मिल सकते हैं। बोले ऐसा कोई दृष्टांत? बोले हाँ। कौन? बोले जटायु। जटायु मृत्यु की अवस्था में अंतिम घड़ी गिन रहा था और मरने का समय था, और उस समय भगवान राम वहां पर पहुंच गए और मरते हुए ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने देखा कि ये तो हमारे पिता के मित्र है। और जब उनका देहांत हो गया, भगवान श्री रामचंद्र ने अपने हाथों से जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। सुरदास ने बहुत सुंदर पद लिखा है, अद्भुत पद लिखा है कि संसार में किसी के पिता की मृत्यु हुई हो तो सबसे बड़ा पुत्र उस पिता का देह संस्कार करता है, उस पिता की चिता को आग लगाता है। लेकिन शास्त्र की एक विलक्षण घटना, एक अद्भुत इतिहास, राजा दशरथ की मृत्यु हुई, वहां पर बड़े पुत्र ने अंतिम संस्कार नहीं किया, भरत ने अंतिम संस्कार किया, और धन्य है वह जटायु, धन्य धन्य ते धन्य जटायु। अपने पिता का संस्कार भगवान राम ने अपने हाथ से नहीं किया, लेकिन इतने बड़े भक्त का संस्कार, जटायु का संस्कार भगवान राम ने अपने हाथ से कर दिया। क्यों? क्योंकि हृदय में भक्ति थी। पिता का संस्कार नहीं किया, लेकिन इस एक तुच्छ पक्षी का संस्कार अपने हाथों से किया। क्यों? क्योंकि हृदय में भक्ति जो थी। अद्भुत। सीता जी ने बहुत सुंदर, सुरदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए और देवी सीता को मुद्रित देकर पहचान बताई, हनुमान जी महाराज जब लौट रहे थे तब देवी सीता ने हनुमान जी महाराज को इतना ही कहा कि महाराज आप वापस जा रहे हो, प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आ सके न आ सके मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में एक ही चिंता है। क्या? प्रभु आप जब वापस जाओगे ना तो मेरे पति को कहना कि जटायु जी को, जटायु मेरे ससुर के समान है, और जटायु जी को अयोध्या में लेकर जाए और अयोध्या में राज सिंहासन पर बिठाकर मेरे पति को कहना उनके चरणों की सेवा करें, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर भक्ति की है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि जटायु जी ने अपने प्राण को त्याग दिया। उस समय सुरदास जी वर्णन करते हैं देवी सीता यह सुनते ही भूमि के ऊपर गिर गई, मूर्छित हो गई। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए न वाक, वाणी की तीव्रता, वाणी की अलंकारिता कोई मायने नहीं रखती। गुंगा व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, हृदय में भगवान की भक्ति होनी चाहिए। और फिर आगे कहते हैं न आकृति, भगवान की प्राप्ति करने के लिए आकृति की भी आवश्यकता नहीं। आकृति माने स्वरूप। बताइए अहल्या की कौन सी बड़ी आकृति थी? पत्थर बनकर पड़ी थी, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र उनको मिल गए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भक्ति थी। तो इस प्रकार जो लोग हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं निश्चित भगवान उनको प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज ये स्तुति करते हुए कहते हैं कुछ लोगों के पास ठीक से वाणी नहीं होती है, कुछ लोगों के पास रूप नहीं होता है, तो किसी का जन्म अच्छे परिवार में नहीं होता है, लेकिन फिर भी भगवान उनको मिलते हैं। लेकिन क्या बताऊं, हम जैसे लोगों में तो इनमें से कुछ नहीं है। यहां पर तो उन लोगों की चर्चा हुई जिनमें एक एक गुण की कमी थी, लेकिन हनुमान जी महाराज अब अपनी ओर दृष्टि करते हुए कहते हैं कि दुनिया में जितने भी गुण होते हैं उनमें से एक भी गुण हम में नहीं था। बताइए बंदरों में क्या गुण होता है? गिनाते हैं हनुमान जी महाराज। हम बंदरों का जन्म न तो कोई उच्च कुल में माना जाता है, न तो हम बंदरों का कोई रूप होता है, न तो हम बंदरों की कोई आकृति होती है, न तो हम बंदरों के न तो हम बंदरों की कोई वाणी शक्ति होती है, हम बंदरों में कोई गुण नहीं होता है। लेकिन फिर भी परम प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री रामचंद्र ने हम लोगों को स्वीकार किया है। ये है भगवान की करुणा। आज तक हमने श्लोकों में सुना था हे कृष्ण करुणा सिंधु, लेकिन हमने देख लिया वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र करुणा के सागर हैं, क्योंकि हम बंदर होने के बाद भी उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया। तब श्रीपाद सिद्धर स्वामी टीका में लिखते हैं, इस श्लोक की टीका में, मानो कोई कहे कि भगवान ने बंदरों को स्वीकार किया अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि उनको समुद्र पर सेतु बांधना था, सीता को ढूंढना था। मानो यदि ऐसा कोई आरोप किया जाए, हनुमान जी को कहा जाए कि हनुमान जी महाराज ये तो स्वार्थ की बात थी, भगवान राम ने तुमको इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनका स्वार्थ था, तब हनुमान जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, यदि भगवान श्री रामचंद्र चाहते, श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने परपोर्ट में, यदि भगवान श्री रामचंद्र चाहते तो एक सेकंड में करोड़ों सीता को प्रकट कर सकते, यदि भगवान श्री रामचंद्र चाहते तो एक सेकंड में करोड़ों सेतु बना सकते थे, और यदि भगवान श्री रामचंद्र चाहते तो ये सेतु फेतु बनाने की जरूरत नहीं, अपने आंख के इशारे से रावण को मार सकते थे। परंतु भगवान ने हमको सौभाग्य देने के लिए हमसे सेतु बनवाया और यह कार्य करवाया, हमको सौभाग्य देने के लिए, हमारा नाम बढ़ाने के लिए, नहीं तो भगवान को यह सब कराने की जरूरत नहीं। भगवान इतने कृपालु हैं कि वे हमारा नाम बढ़ाना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि यदि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान ही थे तो उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार क्यों नहीं किया, केवल बंगाल में और विशेष भारत में ही प्रचार किया, पूरी दुनिया में क्यों नहीं किया? तब श्री प्रभुपाद जी यही कहते थे कि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों की कीर्ति बढ़े, उनके भक्तों का यश बढ़े, इसलिए भगवान ने भारत में प्रचार किया और फॉरेन कंट्री मेरे लिए छोड़ दिया। भगवान चाहते थे कि उनके भक्त का यश बढ़े। और प्रभुपाद जी के बाद किसी भक्तों को पूछा जाए कि प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में प्रचार किया, मीरा रोड में क्यों नहीं आए, तो हम लोग कहते हैं प्रभुपाद जी ने मीरा रोड हमारे लिए छोड़ दिया, वो चाहते हैं कि इनकी कीर्ति हो, भगवान चाहते हैं कि अपने भक्तों की कीर्ति हो, इसलिए भगवान वानरों से यह समुद्र पर सेतु इत्यादि बनवाए, नहीं तो भगवान को ये करने की जरूरत नहीं। अतः भगवान बड़े कृपालु हैं, और उस भगवान को प्राप्त करने के लिए हृदय में भक्ति चाहिए। जब अनेकों 33 करोड़ देवी देवताओं की सभा में रावण के प्रकोप से रावण को मारने के लिए भगवान को प्रकट कराना था, और उस समय प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उस भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान को कैसे प्रकट किया जाए, कहां जाएंगे तो भगवान हमें मिलेंगे, तब शिवजी पार्वती को कहते हैं कि हे उमा, उस समय मैं भी उस सभा में बैठा था, देवताओं ने मुझे भी आमंत्रण दिया था, वो मीटिंग में मैं भी था, देवताओं का प्रश्न उठा कहां भगवान मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कुछ लोगों ने कहा योगियों के हृदय में मिलेंगे, चलो योगियों के पास, कुछ लोगों ने कहा जंगल में मिलेंगे, यहां मिलेंगे वहां मिलेंगे। अवसर पाकर उमा उस समय मैं भी वहां पर बैठा था, और मैंने कहा भागने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, ये भगवान जो है सब जगह पर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये हरि जो है, ये भगवान जो है पूर्ण रूप से व्यापक है और सभी जगह पर विराजमान है, अत्र तत्र सर्वत्र। व्याप्ति इति विष्णु, विष्णु का अर्थ ही है व्याप्त, भगवान सभी जगह पर विराजमान है। और एक बहुत सुंदर बात बताई, सर्वत्र समाना, सब जगह पर समान रूप से, ऐसा नहीं मीरा रोड में 10 किलो के हैं तो बोरीवली में 5 किलो के ही भगवान है, कितना सुंदर बात कहते हैं, सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह पर समान रूप से विराजमान है। तब तो कुछ लोग कहेंगे तो फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, तो ना बुद्धिमान जो होते हैं तुरंत प्रश्न उठाते हैं, चलो अच्छा है कल से गिरधारी मंदिर में आना बंद, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान है, सब जगह पर भगवान है, तो मन चंगा तो कटोरी में गंगा, घर घर पर ही भगवान को देखें। कुछ लोग तर्क देते हैं कि भगवान यदि ब्रह्म के रूप में सब जगह पर व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, अत्र तत्र सर्वत्र है, तो फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत, हम लोग घर पे ही। तब शिव जी बहुत सुंदर कहते हैं, मानो हमारी भाषा में कहूं तो अभी आप देखोगे ये जो हवा घूम रही है ना, उस हवा में एयरटेल का नेटवर्क है, रिलायंस का नेटवर्क है, वोडाफोन का है ना, डोकोमो का है, यूनिनोर का, सब नेटवर्क का, लेकिन दिख रहा है सब, डिश टीवी, जी डिश टीवी का भी है, एयरटेल डिश टीवी का भी नेटवर्क तो है ना, और सर्वत्र यहां भी है वहां भी है, वह किचन हॉल में जाओ वहां भी है, सब जगह पर है ये साधारण नेटवर्क, सब जगह पर है। और ये साधारण नेटवर्क को देखने के लिए जब टीवी की आवश्यकता है तो परब्रह्म भगवान को देखने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि यहां पर हम दावा करें नेटवर्क तो है यहां पर, तो फिर बात क्यों नहीं हो रही है? अरे नेटवर्क है लेकिन बात करने के लिए मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवान सब जगह पर है, शिव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन उस भगवान को देखने के लिए प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, उस भगवान का दर्शन करने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। जब प्रेम होगा तब प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, प्रेम के अंजन से भगवान का दर्शन होता है, संत हृदय हृदयेशु विलोकयन्ति, प्रेम की दृष्टि से। ब्रह्मा जी कहते हैं यथाग्नि मेदस्य वृतम च गोषु गुयन्न अम्बु, जिसे लकड़े में अग्नि है लेकिन उस अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ मेहनत की आवश्यकता है। जैसे पृथ्वी में आलू है, किसी को कहा जाए वो जो खेत है वहां सामने, वहां पृथ्वी में आलू है, जरा उसकी उसको निकालो, तो कुछ लोग खड्डा कर देंगे, 50 फुट का खड्डा करेंगे, आलू तो नहीं मिला। भूमि में आलू है लेकिन उस आलू को प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है, आलू का बीज डालो, सिंचन करो, फिर जाकर। और गाय में दूध है, कहा जाए कि ये गाय रखो इसमें दूध है निकाल लेना, लंबी तलवार लेकर आए, गाय का टुकड़ा कर दे, बोले दूध तो नहीं दिख रहा है। गाय में दूध है लेकिन उसे निकालने की कुछ विधि है, उसको घास खिलाओ और घास खिलाने के बाद बछड़े को उनके पास लेकर जाओ, बछड़े को देखकर गाय को वात्सल्य भाव आएगा, वो अपने थन में दूध छोड़ेगी, वो बछड़ा जैसी दूध थोड़ा सा पिएगा, बछड़े को हटा दो पात्र भर लो, यही करते ना। लेकिन अभी अभी मैं वृंदावन से आया, वास्तव में हम लोग तो कहने मात्र के गो भक्त है, गाय के भक्त, गाय के भक्त, और करते क्या है, बछड़ा जाता है दूध पीने के लिए, थोड़ा सा बछड़ा दूध पीता है, गाय थन में दूध छोड़ देती है, बछड़े को घसीट कर खींच कर दूर लेकर जाते हैं, और जो दूध बछड़े का है वो हम लोग पी जाते हैं, और कहते गो माता के भक्त हैं हम लोग, हम लोग गाय रखते हैं, क्या खाक गाय रखते हैं। हमने हमारी आंखों से वृंदावन में देखा, घर में दंपति है, गाय है, बछड़ा है, और बछड़े को छोड़ देते हैं, जितना दूध पीना है उतना बछड़ा पी ले, और फिर जब बचता है तब वह गृहस्थी पीता है, इसे कहते हैं भक्ति। कहने का भाव यह है गाय में दूध है लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। ठीक उसी प्रकार इस संसार में भगवान है लेकिन उस भगवान को प्राप्त करने की कोई विधि है, मेहनत है, और वो मेहनत क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे बिना मेहनत के भगवान नहीं मिलेंगे। अंतिम नो पेन नो गेन, अंत में प्रभु कहे सनातन कृष्ण प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन अनेक जतन विना, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन अनेक जतन विना। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा
कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए सनातन बहुत यत्न करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कृष्ण मिलेंगे। हम तो चार नियम का पालन करते हैं, सुला मेला करते हैं, भगवान क्यों नहीं मिल रहा है? भगवान ऐसे मेहनत प्रयास करना होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण रत्न धन, कृष्ण को रत्न धन के साथ तुलना करते हैं। अरे संसार का साधारण रत्न धन प्राप्त करने के लिए ये डायमंड मार्केट वालों को पूछो, सुबह 9 बजे निकल जाते हैं कि विरार की ट्रेन में इतना रिस्क लेकर रात को 9 बजे दिन भर 12 घंटे तक मेहनत करते हैं, तब जाकर डबल सिंगल चौकी के थोड़े बहुत हीरे मिलते हैं। संसार के साधारण हीरे को प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, तो क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी? उस परम ईश्वर पर ब्रह्म को प्राप्त करने मेहनत, और वो मेहनत क्या है? श्रवण और कीर्तन जो आप लोग कर रहे हैं, इसी प्रकार श्रवण और कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति होगी। आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि आप सब लोग श्रवण कीर्तन में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम भी आपकी तरह मेहनत कर पाए, भगवान का भजन में लग पाए, इसी आशा और अनुग्रह से ध्यान को विराम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।